का था, रूह वही रूप नया।
खौफनाक इमारत के भाग तीन में आपने सुना कि कैप्टन फयाज और इमरान ने उसी खौफनाक इमारत में दूसरी लाश बरामद की थी। इमरान इस बात की खोज में लग गया था कि वो लाश किसकी है। उस लाश के हाथ से जो कागज बरामद हुआ था वो मिस्टर जहांगीर के लेटर हेड के कागज से मेल खाता था। क्या मिस्टर जहांगीर का हाथ इन कत्लों में रहा होगा? क्या बताया उस खौफनाक इमारत के मुजाविर ने? 14 तारीख की रात को जज साहब की बेटी किस लड़के के साथ उस इमारत में आई थी और 16 तारीख को वहां पहली लाश मिली थी? इन सारे राज से पर्दा उठाने के लिए सुनिए भाग चार। कैप्टन फयाज काम में व्यस्त था कि उसके पास इमरान का पैगाम पहुंचा। उसने फयाज को उसके ऑफिस के करीब के रेस्टोरेंट में बुलवा भेजा था। फयाज ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। इमरान एक खाली मेज पर तबला बजा रहा था। फयाज को देखकर अहमकों की तरह मुस्कुराया। हाँ, कोई नई बात? फयाज ने उसके करीब बैठते हुए पूछा।
मीर तकी मीर गालिब तखल्लुस करते थे,
ये इत्तला तुम डाक के जरिए भी दे सकते थे, फयाज चिढ़कर बोला। 14 तारीख की रात को वो महबूबा एक आंख वाली कहां थी?
तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो?
पता लगा कर बताओ। अगर वो कहे कि उसने अपनी वो रात अपनी किसी खाला के यहां बिताई है तो तुम्हारा फर्ज है कि उस खाला से बात की तहकीक करके हमदर्द दवा खाने को फौरन इत्तला कर दो, वरना खतो किताबत खुफिया न रखी जाएगी। इमरान, मैं बहुत मशगूल हूँ, समझे?
हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। क्या आजकल तुम्हारे ऑफिस में मक्खियों की कसरत हो गई है?
कसरत से ये मुराद नहीं कि मक्खियां डंड पेलती हैं। मैं जा रहा हूँ, बाय, फयाज झुंझला कर उठता हुआ बोला। अरे अरे अरे, क्या तुम्हारी नाक पर मक्खियां नहीं बैठती? इमरान ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। फयाज उसे घूरता हुआ बैठ गया। वो सचमुच झुंझला गया था। तुम क्यों आए थे? उसने पूछा।
ओह, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है शायद मैं तुमसे चावल का भाव पूछने आया था, मगर तुम कहोगे कि मैं कोई नाचने वाली तो हूं नहीं कि भाव बताऊं। वैसे तुम्हें ये इत्तला दे सकता हूं कि इन लाशों के सिलसिले में कहीं ना कहीं एक आंख वाली महबूबा का कदम जरूर है। मैं कोई गलत लफ्ज तो नहीं बोल रहा ना? हाँ,
उसका कदम? वो किस तरह? फयाज यकायक चौंक पड़ा। इनसाइक्लोपीडिया में तो यही लिखा है।
बस मालूम करो कि उसने 14 तारीख की रात कहां गुजारी। इमरान सिर हिलाकर बोला। क्या तुम सचमुच संजीदा हो?
ओफो, बेवकूफ आदमी हमेशा संजीदा रहते हैं यार।
अच्छा ठीक है, मालूम करूंगा। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। और दूसरी बात ये कि मुझे जज साहब के दोस्त अयाज के मुकम्मल हालात की जानकारी चाहिए। वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ था और किस खानदान से ताल्लुक रखता था? उसके अलावा दूसरे रिश्तेदार वगैरह कहाँ रहते हैं? सब मर गए या कुछ जिंदा भी हैं?
तो ऐसा करो, आज शाम की चाय मेरे घर पे पियो, फयाज बोला।
और इस वक्त की चाय? इमरान ने बड़े भोलेपन से पूछा। फयाज ने हंसकर वेटर को चाय का ऑर्डर दिया। इमरान उल्लू की तरह आंखें घुमा रहा था और कुछ देर बाद बोला,
क्या तुम तो मुझे जज साहब से मिलवाओगे?
हाँ, मैं तुम्हारी मौजूदगी में ही उनसे ये सारी गुफ्तगू करूंगा।
नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आएगी, इमरान दांतों तले उंगली दबाकर दोहरा हो गया।
अरे यार, क्यों 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 बोर कर रहे हो, शर्म की क्या बात है?
नहीं नहीं, मैं वालिद साहब को भेज दूंगा।
क्या बक रहे हो?
मैं अपनी शादी खुद तय नहीं करना चाहता ना, अरे अल्लाह खुदा समझे तुमसे। अरे मैं अयाज वाली बात कर रहा हूँ। अरे लाहौल विला कुवत। इमरान ने झेप जाने की एक्टिंग की। इमरान यार आदमी बनो।
जी अच्छा।
इमरान ने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया। चाय आ गई थी। फयाज कुछ सोच रहा था। कभी कभी वो इमरान की तरफ भी देख लेता था, जो अपने सामने वाली दीवार पर लगे आईने में देख देख कर मुंह बना रहा था। फयाज ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने खिसका दी। यार फयाज, वो शहीद मर्द की कब्र वाला मुजाविर बड़ा ग्रेट आदमी मालूम होता है, इमरान बोला। क्यों? क्योंकि उसने एक बड़ी ग्रेट बात कही थी। क्या? यही कि पुलिस वाले गधे होते हैं। हाँ? ऐसा क्यों कहा था उसने? फयाज चौंक कर बोला। पता नहीं, लेकिन बात बड़े पते की थी। अरे तुम क्यों खामखा गाली देने पर तुले हो? अरे नहीं प्यारे। अच्छा तुम ये बताओ, वहां कब्र किसने बनवाई थी और उस कमरे के प्लास्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बेकार की बातों में सर नहीं खपाता, फयाज चिढ़कर बोला। इस मामले से उसका क्या ताल्लुक? तब तो किसी अजनबी की लाश का वहां पाया जाना भी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता होगा, इमरान ने कहा। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फयाज झुंझला कर बोला। ये कि नेक बच्चे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, किताब खोलकर अलिफ से उल्लू, ब से बंदर, पे से पतंग। इमरान खुदा के लिए, फयाज हाथ उठाकर बोला। और खुद को हर वक्त याद रखते हैं। बके जाओ। चलो मैं खामोश हो गया। एक खामोशी हजार टलाएं बालती है, हैं? अरे क्या टलाएं लाहौल विला कुबत, मैंने अभी क्या कहा? अपना सर। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, मेरा सर बड़ा मजबूत है। एक बार इतना मजबूत हो गया था कि मैं उसे बैंगन का भुरता कहा करता था। चाय खत्म करके दफा हो जाइए, मुझे बहुत काम है। और हाँ शाम को घर जरूर आना, फयाज बोला। उसी शाम को इमरान और फयाज जज साहब के ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी लड़की भी मौजूद थी और उसने उस वक्त भी काले रंग की ऐनक लगा रखी थी। इमरान बार बार उसकी तरफ देखकर ठंडी आहें भर रहा था। फयाज कभी कभी राबिया की नजर बचाकर उसे घूरने लगता था। थोड़ी देर बाद जज साहब आ गए और राबिया उठकर चली गई। सलाम, बड़ी तकलीफ हुई आपको, फयाज बोला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फरमाइए। बात यह है कि मैं अयाज के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं तो आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं उसके खानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ, ताकि उसके रिश्तेदारों से मिल सकूँ।
अफसोस कि मैं उसके बारे में तो कुछ ना बता सकूंगा। बात आपको अजीब मालूम होगी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, हालांकि हम गहरे दोस्त थे।
क्या आप ये भी ना बता सकेंगे कि वो बाशिंदा कहाँ का था?
अफसोस मैं ये भी नहीं जानता।
बड़ी अजीब बात है। अच्छा पहली मुलाकात कहाँ हुई थी?
इंग्लैंड में।
फयाज एकदम चौंका। इमरान बिल्कुल ठस बैठा रहा, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। कब की बात है? फयाज ने पूछा।
यही कोई 30 साल पहले की, और ये मुलाकात बड़े अजीब हालात में हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ रहा था। एक बार हंगामे में फंस गया था जिसकी वजह 100% गलत फहमी थी। अब से 30 साल पहले का लंदन नफरत अंगेज था, जितनी नफरत की जाए कम थी। इसी से अंदाजा लगाइए कि वहां के एक होटल पर एक ऐसा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, हिंदुस्तानियों और कुत्तों का दाखिला मना है। अल मैं ये नहीं कह सकता कि अब वो है या नहीं। बहरहाल ऐसे माहौल में अगर किसी हिंदुस्तानी और किसी अंग्रेज के दरमियान में कोई गलत फहमी पैदा हो जाए तो अंजाम जाहिर ही है। वो एक रेस्टोरेंट था जहां एक अंग्रेज से मेरा झगड़ा हो गया था। इलाका ईस्ट एंड का था जहां ज्यादातर जंगली ही रहा करते थे, आज भी जंगली ही रहते हैं। अरे इंतहाई गैर मुहज्जब लोग जो जानवरों की तरह रहते हैं। ओह मैं तो खामखा की बात को लंबी कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब ये है कि झगड़ा बढ़ गया। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद ही किसी तरह जान बचाकर निकलना चाहता था। अचानक एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ मेरे पास आ पहुंच गया। वो अयाज था। उसी दिन मैंने उसे पहली बार देखा और इस रूप में देखा कि आज तक हैरान हूं। वो मजमा जो मुझे मार डालने पर तुल गया था, अयाज की शक्ल देखते ही तितर बितर हो गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे भेड़ों के झुंड में कोई भेड़िया घुसाया हो। बाद में मुझे मालूम हुआ कि अयाज उस इलाके के दार व असर लोगों में से था। ऐसा क्यों था ये तो मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका। हमारे ताल्लुकात बढ़े और बढ़ते चले गए, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी जान ना सका। वो हिंदुस्तानी ही था, लेकिन मुझे यहां तक भी मालूम ना हो सका कि वो किस सूबे या शहर का बाशिंदा था।
जज साहब ने खामोश होकर उनकी तरफ सिगार केस बढ़ाया। इमरान खामोश बैठा छत की तरफ घूर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फयाज जबरदस्ती किसी बेवकूफ को पकड़ लाया हो। बेवकूफ ही नहीं बल्कि ऐसा आदमी जो उनकी गुफ्तगू को समझने के लायक ही ना हो। फयाज ने कई बार उसे कनखियों से देखा भी, लेकिन वो खामोश ही रहा। शुक्रिया, फयाज ने सिगार लेते हुए और फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, जी ये नहीं पीते। इस पर इमरान ने छत से अपनी नजरें ना हटाई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा हो। जज साहब ने भी अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। अचानक इमरान ने ठंडी सांस लेकर या अल्लाह ऐसा कहा और सीधा होकर बैठ गया। वो मुंह चलाता हुआ उन दोनों को बेवकूफों की तरह देख रहा था। इस पर फयाज को खुशी हुई कि जज साहब ने इमरान के बारे में कुछ नहीं पूछा। फयाज कोई दूसरा सवाल सोच रहा था और साथ ही साथ ये दुआ कर रहा था कि इमरान की जबान बंद ही रहे तो बेहतर है। मगर शायद इमरान चेहरा पढ़ने में भी माहिर था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसने बकना शुरू कर दिया। हाँ साहब, अच्छे लोग बहुत कम जिंदगी लेकर आते हैं। अयाज साहब तो वली अल्लाह थे। चरख का ज़रफ़्तारो नाहंजार कब किसी को, गालिब का शेर है। लेकिन इससे पहले कि इमरान शेर सुनाता, फयाज बोल पड़ा, अब जी हाँ, कस्बे वालों में कुछ इसी किस्म की अफवाह है।
भाई बात तो ये है कि किसी भी तरह ये चीज मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। सुना मैंने भी है,
जज साहब बोले।
उसकी मौत के बाद कस्बे के कुछ मुअज्जिज़ लोगों से मैं मिला भी था। उन्होंने भी यही ख्याल जाहिर किया था कि वो कोई पहुंचा हुआ आदमी था, लेकिन मैं नहीं समझता। उसकी शख्सियत भेद भरी जरूर थी, मगर इन मानी में नहीं। ऐसा कोई मतलब नहीं था।
उसके नौकर के बारे में क्या ख्याल है जो कब्र की मुजाविरी करता है, फयाज ने पूछा।
अरे वे भी एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इमरान तड़ से बोला, और जज साहब फिर उसे घूरने लगे, लेकिन इस बार भी उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा।
क्या वसीयत में ये बात जाहिर कर दी गई है कि कब्र का मुजाविर इमारत के बाहरी कमरे में काबिज रहेगा, फयाज ने जज साहब से पूछा।
जी हाँ कतई,
जज साहब ने उकताए हुए लहजे में कहा।
बेहतर होगा कि अगर हम दूसरी बातें करें तो। उस इमारत से मेरा बस यही ताल्लुक है कि मैं कानूनी तौर पर उसका मालिक हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे घर का कोई आदमी आज तक उसमें नहीं रहा।
कोई कभी उधर गया भी होगा शायद, फयाज ने पूछा।
अरे भाई क्यों नहीं, शुरू में तो सबको ही उसको देखने का शौक था। जाहिर है कि वो एक हैरतअंगेज तरीके से हमारी मिल्कियत में आई थी, तो जरूर।
अयाज साहब के जनाजे पर नूर की बारिश हुई थी, इमरान ने फिर टुकड़ा लगाया।
ओ, मुझे तो नहीं पता, मैं उस वक्त वहां पहुंचा था जब वो दफन किया जा चुका था।
जज साहब बेजारी से बोले, मेरा ख्याल है कि उसी इमारत पर किसी की हवा का असर है, फयाज ने कहा।
हो सकता है, काश वो मेरी मिल्कियत ना होती। क्या अब आप लोग मुझे इजाजत देंगे?
माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ थी, मगर मामला ही ऐसा है, फयाज उठता हुआ बोला। फयाज और इमरान बाहर निकले। फयाज उस पर झल्लाया हुआ था, बाहर आते ही बरस पड़ा।
तुम हर जगह अपने गधेपन का सबूत क्यों देने लगते हो?
और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ, इमरान बोला।
क्यों? मैंने क्या किया? तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि एक आंख वाली 14 तारीख की रात को कहाँ थी? अरे क्यों बोर करते हो, मेरा मूड ठीक नहीं है।
खैर मुझे क्या, मैं खुद ही पूछ लूंगा। सर जहांगीर को जानते हो? इमरान ने कहा।
हाँ क्यों?
वो मेरा रकीब है।
होगा तो मैं क्या करूं?
किसी तरह पता लगाओ कि वो आजकल कहां है।
अरे यार मेरा वक्त बर्बाद ना करो,
फयाज झुंझला गया।
ठीक है तब फिर तुम भी वहीं जाओ जहां शैतान कयामत के दिन आएगा।
खुदा हाफिज,
इमरान ने कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ जज साहब के गराज की तरफ चल पड़ा, जहां से राबिया जाने के लिए कार निकाल रही थी। मिस सलीम, शायद हम पहले भी मिल चुके हैं।
ओह जी हाँ जी हाँ, राबिया जल्दी से बोली। क्या आप मुझे लिफ्ट देना पसंद करेंगी?
शौक से आइए। राबिया खुद ड्राइव कर रही थी। इमरान शुक्रिया अदा करके उसके बराबर बैठ गया।
कहाँ उतरिएगा? राबिया ने पूछा।
सच पूछिए तो मैं तो उतरना ही ना चाहूँगा, राबिया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उस वक्त उसने एक नकली आंख लगा रखी थी, इसलिए आंखों पर ऐनक नहीं थी। फयाज की बीवी ने उसे इमरान के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए वो उसे बेवकूफ़ समझने के लिए तैयार नहीं थी। क्या आप कुछ नाराज तो नहीं हैं? इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा।
जी नहीं
नहीं तो, राबिया चौंक पड़ी और फिर हंसने लगी। मैंने कहा शायद मुझसे लोग आमतौर पर नाराज ही रहा करते हैं, उनका कहना है कि मैं उन्हें खामखा गुस्सा दिलाता हूँ।
पता नहीं, मुझे तो आज तक आपने गुस्सा नहीं दिलाया।
अरे वाह, तब तो ये मेरी खुशकिस्मती है। वैसे अगर मैं कोशिश करूंगा तो आपको गुस्सा दिला सकता हूँ, इमरान ने कहा। राबिया फिर हंसने लगी।
ठीक है कीजिए कोशिश, उसने कहा।
अच्छा तो आप शायद ये समझती हैं कि ये नामुमकिन है, इमरान ने बेवकूफों की तरह हंसकर कहा।
मैं तो यही समझती हूँ कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आता।
अच्छा तो फिर संभलिए,
इमरान ने इस तरह कहा जैसे एक तलवारबाज किसी दूसरे तलवारबाज को ललकारता हुआ किसी घटिया सी फिल्म में देखा जा सकता है। राबिया कुछ ना बोली और वो कुछ बोर सी होने लगी थी।
आप 14 तारीख की रात को कहाँ थी?
इमरान ने अचानक पूछा।
जी, राबिया एकदम से चौंक पड़ी। ओ स्टीयरिंग संभालिए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इमरान बोला।
देखिए मैंने आपको गुस्सा दिलाया ना, फिर उसने जोरदार कहकहा लगाया और अपनी टांग पीटने लगा। राबिया की सांस फूलने लगी थी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे।
देखिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा, आप कहाँ उतरेंगे? उसने हांफते हुए कहा।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इमरान शांत लहजे में बोला।
आपसे मतलब, आप कौन होते हैं पूछने वाले? देखा आ गया ना गुस्सा।
वैसे ये बात बहुत अहम है और अगर पुलिस वालों के कान तक जा पहुंची तो बड़ी जहमत होगी, मुमकिन है कि मैं कोई ऐसी कार्रवाई कर सकूं जिसकी वजह से पुलिस ये सवाल ही ना उठाए। राबिया कुछ ना बोली, वो अपने खुश्क होठों पर जबान फेर रही थी।
मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ थी, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके साथ कौन था, इमरान ने फिर कहा।
मुझे प्यास लग रही है, राबिया भर्राई हुई आवाज में बोली।
ओहो तो रोकिए, कैफे नाब्रस का तो पास में ही है।
कुछ आगे चलकर राबिया ने कार खड़ी कर दी और वो दोनों उतरकर फुटपाथ से गुजरते हुए कैफे नब्रास्का में पहुंच गए। इमरान ने नजर दौड़ाई, कोने वाली टेबल खाली थी, वे बैठ गए। चाय से पहले इमरान ने एक गिलास ठंडे पानी के लिए कहा। मुझे यकीन है कि वो कुंजी वापसी में उसके पास रह गई होगी, इमरान ने कहा। किसके पास? राबिया चौंक पड़ी। फिक्र ना कीजिए, मुझे यकीन है कि उसने आपको अपना सही नाम और पता हरगिज ना बताया होगा, और कुंजी वापस कर देने के बाद से अब तक आपसे मिला भी ना होगा। राबिया बिल्कुल निढाल हो गई। उसने मुर्दा सी आवाज में कहा, फिर अब आप पूछना क्या चाहते हैं? आप उससे कब और किन हालात में मिली थी? अब से 2 महीने पहले कहाँ मिला था? एक फंक्शन में। मुझे याद नहीं है कि किसने मिलवाया था। फंक्शन कहाँ था? शायद सर जहांगीर की सालगिरह का मौका था। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुंजी आपको उसने कब वापस की थी? 15 की शाम को और 16 की सुबह को लाश पाई गई थी, इमरान ने कहा। राबिया बुरी तरह हांफने लगी। उसने चाय की प्याली मेज पर रख कर कुर्सी पर टेक लगा ली। उसकी हालत बाज के पंजे में फंसी हुई किसी नन्ही मुन्ही चिड़िया जैसी लग रही थी। 15 को दिन भर चाबी उसके पास रही। उसने उसकी नकल तैयार करवा के चाबी आपको वापस कर दी। उसके बाद वो फिर आपसे नहीं मिला। गलत कह रहा हूं? ठीक है। वो मुझसे कहा करता था कि वो सैलानी है, जाफरिया होटल में रुका हुआ है, लेकिन मैं परसों वहां गई थी। वो खामोश हो गई। उस पर इमरान ने सिर हिलाकर कहा, और आपको वहां मालूम हुआ कि उस नाम का कोई आदमी वहां कभी ठहरा ही नहीं था, राइट? जी हाँ, राबिया सिर झुका कर बोली। आपसे उसकी दोस्ती का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वो किसी तरह आपसे उस इमारत की चाबी हासिल कर सके। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। 2 मिनट, बस 2 मिनट, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। आपकी ज्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थी? टिप टॉप नाइट क्लब में। लेडी जहांगीर से उसके कैसे ताल्लुक थे? लेडी जहांगीर? आखिर इन मामलात में आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? राबिया चिढ़ कर बोली। क्या आप मेरे सवाल का जवाब ना देंगी? इमरान ने बड़ी शराफत से पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने उन दोनों को कभी मिलते हुए नहीं देखा। जी शुक्रिया, अब मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा। जाहिर है कि उसने नाम भी कभी सही बताया ही ना होगा, लेकिन अगर आप उसका हुलिया बता सकें तो शुक्रगुजार रहूंगा। राबिया को बताना ही पड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गमगीन थी और साथ ही साथ रंजीदा भी। इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से कुचलने लगा। चिंतन मनन करते समय च्युइंगम उसका बेहतरीन साथी साबित होती थी। जासूसी उपन्यासों के जासूसों की तरह ना उसे सिगार में दिलचस्पी थी, ना पाइप में। शराब भी ना पीता था। उसके जहन में एक वक्त में कई सवाल थे। वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था कि इन मामलों से सर जहांगीर का क्या ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर ही के राइटिंग पैड का था। राबिया से रहस्यमय नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर के ही थ्रू हुई थी। लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का जिक्र किया था वो उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ नहीं थी। लेडी जहांगीर की यह बात भी सच हो सकती है कि अगर वो शहर के किसी अच्छी हैसियत के खानदान का आदमी होता तो लेडी जहांगीर उससे वाकिफ जरूर होती। फर्ज किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक है तो उसने उसका जिक्र इमरान से क्यों किया? हो सकता है कि वो उसकी दूसरी जिंदगी से वाकिफ ना रही हो, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि उसने जिक्र किया ही क्यों? वो कोई ऐसी अहम बात तो थी नहीं। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्करों में तो रहते ही हैं, चाहे वो पानी भरने की मशक से भी क्यों ना बदतर हो। फिर एक सवाल उसके जहन में और उभरा, आखिर उस मुजाविर ने पुलिस को राबिया के बारे में क्यों नहीं बताया? कब्र और लाश के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वो कौन लोग हैं और इस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वे सर जहांगीर ही हैं तो उनका इस इमारत से क्या ताल्लुक? सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन यूं भी नहीं कि उन पर किसी किस्म का शक कर सकता। सर जहांगीर शहर के इज्जतदार लोगों में थे, न सिर्फ इज्जतदार बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई एक कार उसके रास्ते में आ गई। ये कार राबिया की थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, उसने खिड़की से सिर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, मैं डूब रही हूँ, राबिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं? इमरान ने कहकहा लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो नहीं होने पाएगा। आप लोग मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर झक मारने मैदान में निकली हैं, मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। राबिया कुछ ना बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को, मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप बेफिक्र हैं ना, गाड़ी रोकिए। अच्छा ठाठा, अरे, राबिया ने मुंह से हल्की सी चीख निकाली और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? इमरान घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। वही है, उतरिए, मैं उसे बताती हूँ, उतरिए, राबिया बड़बड़ाई। कौन है, क्या बात है? वही जिसने मुझे मुसीबत में फंसाया है। कहाँ है वो? इस बार में अभी अभी गया है, वही था, चमड़े का जैकेट और कथई पतलून में। अच्छा अच्छा, तो आप जाइए, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं भी जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला और राबिया सहम गई। उस वक्त इमरान की आंखें उसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई, उसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा, बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वो एक मेज पर तन्हा बैठा था। वो गठीले जिस्म का एक खूबसूरत नौजवान था, चौड़ा माथा, चोट के निशानों से दागदार था। शायद वो सिर को दाईं जानिब थोड़ा सा झुकाए रखने का आदी था। इमरान उसके करीब ही मेज पर बैठ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो, कुछ बेचैन भी था। इमरान ने फिर एक च्युइंगम निकालकर मुंह में डाल ली। उसका अंदाजा गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी चमड़े की जैकेट वाले के पास आकर बैठ गया और फिर इमरान ने उसके चेहरे से बेचैनी के लक्षण गायब होते देखे। सब चौपट हो रहा है, चमड़े की जैकेट वाला बोला। उस बुड्ढे को खप्त हो गया है यार, दूसरे आदमी ने कहा। इमरान उनकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। जैकेट वाला कुछ देर सोचते हुए अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए फिर से बोला, मुझे यकीन है कि उसका ख्याल गलत है, वो सब कुछ वही है, लेकिन मेरे साथ ही बोदे हैं। अरे, आवाज सुनते ही उनकी रूह फना हो जाती है।
अरे लेकिन भाई, आखिर वे आवाजें हैं कैसी? कैसी ही क्यों ना हो, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए।
और वे दोनों मरे किस तरह?
ये चीज अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। मरता वही है जो काम शुरू करता है, ये हम सब शुरू से ही देखते रहे हैं,
जैकेट वाला कुछ सोचते हुए बोला।
फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, दूसरा आदमी बोला। हमें आज ये मामला तय ही कर लेना है, ये बड़ी बात है कि वहां पुलिस का पहरा नहीं है, बस,
जैकेट वाला बोला।
लेकिन उस रात को हमारे अलावा वहां कोई और भी था, मुझे तो उसी आदमी पर शक है जो बाहर वाले कमरे में रहता है। अच्छा उठो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अरे कुछ पी तो लें, मैं बहुत थक गया हूँ,
क्या पियोगे, विस्की या कुछ और?
फिर वे दोनों पीते रहे और इमरान उठकर करीब के ही एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में चला गया। दूसरे ही लम्हे वो फयाज के किसी निजी नंबर पर फोन डायल कर रहा था।
हेलो सुपर, अरे हाँ मैं ही हूँ।
अरे खैरियत कहाँ, जुकाम हो गया है। अच्छा पूछना ये था कि मैं जुशांदा पी लूँ?
अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है यार।
अरे अच्छा सुनो, आगे हाल ये है कि एक घंटे के अंदर अंदर इस इमारत के गिर्द पहरा लग जाना चाहिए।
अरे बस बस आगे की मत पूछो, जितना कह रहा हूं उतना करो।
अगर इसके खिलाफ हो तो आइंदा शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन की मदद नहीं करेगा, बाय।
इमरान टेलीफोन बूथ से वापस आकर अपनी जगह पर फिर से बैठ गया। जैकेट वाला आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था,
अरे बूढ़ा पागल हो गया है, उसके अंदाजे गलत नहीं होते।
हाँ होगा, छोड़ो सही हो या गलत, अब जहन्नुम में जाएं, लेकिन तुम अपनी कहो, अगर उस लड़की से फिर मुलाकात होगी तो क्या करोगे?
दूसरा मेज पर खाली गिलास पटकता हुआ बोला,
ओ माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं।
ठीक, लेकिन अगर वो पुलिस तक पहुंच गई तो?
वो हरगिज ऐसा नहीं करेगी। बयान देते वक्त उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो एक रात मेरे साथ उस मकान में गुजार चुकी है, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद उसका जहन कुंजी तक पहुंच ही ना सके।
इमरान कॉफी का ऑर्डर देकर दूसरी च्युइंगम चबाने लगा। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सारे माहौल से कतई बेताल्लुक हो, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज उसकी याददाश्त हजम कर रही थी।
तो क्या आज बूढ़ा वहां आएगा, दूसरे आदमी ने पूछा।
हाँ फैसला हो जाए, जैकेट वाले ने कहा।
दोनों उठ गए। इमरान ने अपने हलक में बची खुची कॉफी उड़ेल ली, बिल वो पहले ही अदा कर चुका था। वे दोनों बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई। कुछ देर बाद उनकी टैक्सी के पीछे एक दूसरी टैक्सी भी जा रही थी, जिसकी पिछली सीट पर इमरान उकड़ू बैठा हुआ सिर खुजा रहा था। बेवकूफी भरी हरकतें उससे अक्सर अकेले में भी हो जाती थी। अरखेम लेन में पहुंचकर अगली टैक्सी रुक गई। वो दोनों उतर गए और एक गली में घुस गए। इमरान यहाँ जरा सा चूक गया, उसने उन्हें गली में घुसते जरूर देखा, लेकिन जितनी देर में वो टैक्सी का किराया चुका था वे आंखों से ओझल हो चुके थे। गली सुनसान पड़ी थी। आगे बढ़ा तो दाहिनी तरफ एक दूसरी गली दिखाई दी। अब इस दूसरी गली को तय करते वक्त उसे एहसास हुआ कि वहां तो गलियों का जाल बिछा हुआ था, लिहाजा सिर मारना फिजूल समझ कर वो फिर सड़क पर आकर खड़ा हो गया। वो उस गली के सिरे से थोड़े ही फासले पर रुक गया एक बुक स्टॉल के शोकेस में लगी हुई किताबों के रंगारंग कवर देखने के लिए। शायद 5 ही मिनट बाद एक टैक्सी ठीक उसी गली के सामने रुकी और एक बूढ़ा आदमी उतरकर किराया चुकाने लगा। उसके चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी, लेकिन इमरान उसके माथे की बनावट देखकर चौंका। आंखें भी जानी पहचानी मालूम हो रही थी। जैसे ही वो उस गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफी फासले पर था और अंधेरा होने की वजह से उसे देख लिए जाने का डर भी नहीं था। वो एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया था। इधर दरवाजा खुला और बूढ़ा कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सिर खुजा कर रह गया, लेकिन वो आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अंदर दाखिल होने की संभावनाओं पर गौर करता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहट लेनी शुरू कर दी, लेकिन शायद उसका सितारा ही गर्दिश में था। दूसरे ही लम्हे में दरवाजे के दोनों पट खुले और दोनों आदमी उसके सामने खड़े थे। अंदर मध्यम सी रोशनी में उनके चेहरे तो ना दिखाई दे सके, लेकिन वो काफी मजबूत हाथ पैर के मालूम होते थे।
कौन है,
उनमें से एक हुक्म देने वाले लहजे में बोला। मुझे देर तो नहीं हुई, इमरान तड़ से बोला। दूसरा फौरन जवाब नहीं दे सका, शायद खामोशी हिचकिचाहट की वजह थी।
तुम कौन हो,
दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया। 313, इमरान ने अहमकों की तरह बक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसे होश नहीं था। अचानक उसे गरेबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने विरोध नहीं किया।
अब बताओ तुम कौन हो,
एक ने धक्का देकर कहा।
अंदर ले चलो,
दूसरा बोला। वे दोनों से धक्के देते हुए कमरे में ले आए। यहाँ 7 आदमी एक बड़ी सी मेज के इर्द गिर्द बैठे थे, और वो बूढ़ा जिसका पीछा करता हुआ इमरान यहाँ तक पहुंचा था, शायद वो मुखिया की हैसियत रखता था।
क्योंकि वो मेज के आखिरी सिरे पर था। वो सब इमरान को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान खड़ा चमड़े के जैकेट वाले को घूर रहा था। आहा, यकायक इमरान ने कहकहा लगाया और अपनी गोल गोल आंखें फिराकर फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी महबूबा की जिंदगी बर्बाद कर दी है।
अरे कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, उसने हैरानी के लहजे में कहा।
लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुमने मेरी महबूबा पर डोरे डाले हैं। मैं कुछ नहीं बोला, तुमने एक रात उसके साथ गुजारी है, मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो।
तुम यहाँ क्यों आए हो, अचानक अब बूढ़े ने सवाल किया और उन दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए थे। उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस दौरान में इमरान बराबर अपने मुखातिब को घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दूसरे लोगों से उसे वाकई कोई सरोकार ना हो। फिर अचानक किसी का घूंसा इमरान के जबड़े पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे खिसक गया। उसने झुककर अपनी फेल्ट हैट उठाई और उसे इस तरह झाड़ने लगा जैसे वो यूं ही उसके सर से गिर गई हो। वो अब भी जैकेट वाले को घूरे जा रहा था।
मैं किसी इश्किया नॉवल की आज्ञाकारी रकीब की तरह तुम्हारे हक में अपनी दावेदारी छोड़ सकता हूँ, समझे, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, बूढ़ा चीखा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या उस रात को तुम वहीं पर थे?
इमरान उसकी तरफ देखने का कष्ट भी नहीं कर रहा था।
ये जिंदा बचकर ना जा पाए, बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला।
मगर एक शर्त है, मैयत की बेइज्जती ना होने पाए,
इमरान मुस्कुरा कर बोला। उसके बेवकूफी भरे इत्मीनान में जर्रा बराबर भी फर्क ना आ पाया था। तीन चार आदमी उसकी तरफ लपके, इमरान दूसरे ही लम्हे डपट कर बोला,
हैंड्स अप।
साथ ही उसका हाथ जेब से निकला। उसकी तरफ झपटने वाले पहले तो छिटके, लेकिन फिर उन्होंने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर की बजाय रबर की गुड़िया थी। फिर बूढ़े की गरजदार आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया और वो इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही उसके करीब पहुंचे, इमरान ने गुड़िया का पेट दबा दिया। उसका मुंह खुला और पीले रंग का गहरा गुबार उसमें से निकल कर तीन चार फुट के दायरे में फैल गया। वो चारों बेतहाशा खांसते हुए वहीं ढेर हो गए।
जाने ना पाए,
बूढ़ा फिर चीखा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने काफी भारी चीज इलेक्ट्रिक लैंप पर खींच कर मारी। एक जोरदार आवाज के साथ बल्ब फटा और कमरे में अंधेरा फैल गया। इमरान अपने नाक पर रुमाल रखे हुए दीवार के सहारे मेज के सिरे की तरफ खिसक रहा था। कमरे में अच्छा खासा हंगामा बरपा हो गया था। शायद वो सब अंधेरे में एक दूसरे पर घूंसेबाजी की मशक करने लगे थे। इमरान का हाथ आहिस्ता से मेज के सिरे पर रेंग गया और उसे नाकामी नहीं हुई। जिस चीज पर शुरू ही से उसकी नजर रही थी वो उसके हाथ में आ चुकी थी। ये बूढ़े का चमड़े का हैंडबैग था। वापसी में किसी ने कमरे के दरवाजे पर उसकी राह में आने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने के दो तीन दांतों को रोता हुआ वो भी ढेर हो गया। इमरान जल्द से जल्द कमरे से निकलकर चला जाना चाहता था, क्योंकि उसके हलक में भी अब जलन होने लगी थी। गुड़िया के मुंह से निकला हुआ गुबार अब पूरे कमरे में फैल गया था। खांसी और गालियों का शोर पीछे छोड़ता हुआ वो बाहरी दरवाजे पर पहुंच गया। गली में निकलते ही वो करीब की दूसरी गली में घुस गया। फिलहाल सड़क पर निकलना खतरनाक था। काफी देर तक गलियों में चकराता हुआ अंदर ही अंदर दूसरी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठा हुआ इस तरह अपने होंठ रगड़ रहा था जैसे सचमुच अपनी महबूबा से मिलने के बाद लिपस्टिक के धब्बे छुड़ा रहा हो। कौन है वो नौजवान जिसने राबिया को बेवकूफ बनाकर खौफनाक इमारत की चाबी हासिल की? राबिया से इस खौफनाक इमारत का क्या वास्ता है और उन लाशों का इस नौजवान से क्या ताल्लुक? इमरान बुढ़े आदमी के चमड़े के बैग पर क्यों नजर रखे हुए था? ये सब जानने के लिए सुनिए भागवान।